الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम स्लीप मैनेजमेंट यानी नींद का नज़म के बयान के ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं, जो हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले बयानात उमूर खानदारी में हुस्न इंतजाम में से एक बयान है। तो नींद का नज़म ये हम कुछ पढ़ चुके थे, और इसमें से हमने आखिरी क्लास में नींद की 5 स्टेजेस यानी मराहिल या फेजेस, फेजेस कहें या स्टेजेस कहें, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो नींद के मैकेनिज्म को समझने के लिए हजरत ने ये स्टेजेस बयान करे थे, ताकि हमारे लिए अपनी नींद को मैनेज करना जो है वो आसान हो सके। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, और क्या तरक्की करी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, जो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की तखलीक है, तो उसको गौर से देखना शुरू कर दिया। ठीक है, साइंस का क्या काम है कि जो चीज पहले से मौजूद है उसको गौर से देखा जाए, उसको ऑब्जर्व किया जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए। यही साइंस का मैदान है, और ये मैदान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही इसको फैलाया है इस मैदान को। और ये आज के दौर की के साइंसदानों की कामयाबी नहीं है, बल्कि ये हमेशा से, जब भी इंसानों ने अल्लाह ताला की मखलूक को समझने की कोशिश करी तो हमेशा ही इसको साइंस ही कहा गया। मतलब हमेशा ही ये साइंस ही कहलाएगी जो भी इस तरह की कोशिश हुई है, जब भी हुई है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया, अफला यंजुरूना, अफला यंजुरूना, क्या ये लोग नजर नहीं करते, क्या ये लोग देखते नहीं है। इलल इबिल कैफ खुलिकत, व इलस समाई कैफ रुफ़िअत, व इलल जिबाल कैफ नुसिबत, व इलल अर्ध कैफ सुतिहत। ठीक है, तो जाहिर है जब आसमान की तरफ देखेंगे तो आसमान के रास्ते में जो चीजें हैं वो भी उसके अंदर ही शामिल हो जाएंगी। जितने मॉलिक्यूल्स आते हैं, स्काई की जो लेवल्स आते हैं, उनकी वो सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। और जब जमीन की तरफ देखेंगे, इलल अर्द कैफ सुतिहत, तो जमीन के ऊपर खाली मिट्टी तो नहीं होती ना कि बस खाली मिट्टी को देखते रहेंगे, बल्कि जमीन के ऊपर तो जो कुछ अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है वो मौजूद है, तो वो सारी चीजें फिर इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो बहरहाल साइंस ने कुछ इजादात भी करी, कुछ जो है वो अपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी बनाए, ऐसे अपने मेथोडोलॉजीज भी बनाई कि जिनके जरिए से इंसान की नींद को जो है वो बहुत गहराई में जा करके देखना समझना जो है वो इंसान के लिए आसान हो गया। तो इसमें से एक मेथड जो होता है उसको EEG कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल सी इसका इसकी टर्म बनती है, मुझे याद भी नहीं होती, लेकिन EEG। ठीक है, EEG के जरिए से ये एक्चुअली एक्रोनिम किसका है, इलेक्ट्रो समथिंग ग्राम, ये बहुत लंबा सा इसका लफ्ज है। तो EEG के जरिए से ब्रेन की जो एक्टिविटी है ना उसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है। तो इंसान सो रहा है और उसके ब्रेन की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है, तो उससे फिर ये सारी स्टेजेस जो है फिर समझ में आएंगे। अच्छा, पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर उसके बाद ऐसा होता है। तो ये 4 स्टेजेस मेनली होती हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो इंसान जागने की स्टेज से सोने की स्टेज के अंदर ट्रांजिशन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको जो है वो साइंसदानों ने पहली स्टेज कह दिया। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे कह देते हैं यहाँ पे, लिखा भी है। और इसकी हार्ट बीट वगैरह जो होती है वो स्लो होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद ये जो पीरियड होता है, पहला वाला, पहली स्टेज जो होती है, ये किसी ने कहा ये 7 मिनट की होती है, किसी ने कहा ये 1 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक। कुछ लोगों को 1 मिनट में नींद आ जाती है ना, इधर जो है वो तकिए पर सर रखा, इधर जो है वो नींद आई। हद्दा कि ये भी पता नहीं होता कि तकिए पर सर पहले रखा कि नींद पहले आई, इतनी भी जल्दी कुछ लोगों को नींद आती है। तो इस वजह से 1 मिनट से लेकर के 7 मिनट तक का टाइम लोगों को लगता है ट्रांजिशन पीरियड के अंदर, ठीक है। कुछ लोगों को लंबा टाइम लगता है, लेकिन फिर वो स्लीप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, इस वजह से उनको लंबा टाइम लगता है, वरना आम आदमी को जो है वो 1 से 7 मिनट लगते हैं। फिर दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है, और ये जो स्टेज होती है इसमें फिर इसको लाइट स्लीप भी हजरत ने लिखा है यहाँ पे ना, लाइट स्लीप कहते हैं। तो ये 20 से लेकर के 25 मिनट तक का पीरियड होता है, 20 से लेकर 25 मिनट का। ये थोड़े आगे पीछे भी इसमें हो सकता है, तो अंदाजन 20 से 25 मिनट का जो टाइम होता है ना, उस वो लाइट स्लीप कहलाता है। इसमें इंसान की हार्ट बीट जो होती है वो और कम हो जाती है, सांस की रफ्तार जो है, ब्रीदिंग रेट, वो भी और कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी भी वो डीप स्लीप में नहीं गया होता, ये भी लाइट स्लीप होती है, हल्की नींद। जब ये स्टेज गुजर जाती है तो उसके बाद फिर ना तीसरी स्टेज शुरू होती है, जिसको कुछ लोगों ने तीसरी और चौथी में डिवाइड किया, कुछ लोगों ने बस तीसरी ही कहा, ठीक है। ये जो स्टेज होती है इसको डीप स्लीप कहते हैं, ठीक है। डीप स्लीप यानी गहरी नींद, और ये 20 से लेकर के 40 मिनट तक की होती है, ठीक है। तो पहली अगर आप कहें 7 मिनट की, ठीक है, या उसको आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, पहला स्टेज। फिर दूसरी स्टेज जो है वो 20 मिनट की, फिर तीसरी स्टेज जो है वो भी 20 मिनट की। तो इस तरह से कुल जो है वो 50 मिनट हो जाते हैं, ठीक है ना। 10 प्लस 20 प्लस 20, ये 50 मिनट हो गए, ठीक है। और किसी को अगर पहली स्टेज जो है वो 5 मिनट में गुजर गई, पहली स्टेज 5 मिनट में पूरी हो गई, फिर अगली स्टेज जो है वो 25 मिनट की हो गई, ठीक है, तो ये कितने हो गए, 30 मिनट। और तीसरी स्टेज जो है वो अनदर 30 मिनट की हो गई, ठीक है, तो ये कुल कितने हो गए, 60 मिनट हो गए, राइट। 5 प्लस 25 प्लस 30, तो ये पूरे 60 मिनट हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी वेरी कर सकती है। तो ये जो तीसरी स्टेज होती है ना, इसको डीप स्लीप कहते हैं, और इसको फिर हजरत ने जैसे लिखा, स्लो डेल्टा वेव स्लीप भी कहते हैं, स्लो डेल्टा वेव स्लीप, और कुछ साइंसदानों ने कहा स्लो वेव स्लीप, स्लो वेव स्लीप। तो इसके एक्रोनिम क्या बनता है, SWP, सॉरी SWS, स्लो वेव स्लीप। ये जो डीप स्लीप का पीरियड पीरियड होता है ना, गहरी नींद का, ये अल्लाह ताला ने हमारी हीलिंग के लिए बनाया, यानी हमारी बॉडी की रिपेयर हो रही होती है इस डीप स्लीप के टाइम के अंदर, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो बॉडी के अंदर फिर हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हॉर्मोन्स जो है फिर वो टिश्यू रीबिल्डिंग और टिश्यू की ग्रोथ रिपेयर भी हो रही होती है इसके अंदर, सही है। तो ये डीप स्लीप का पीरियड होता है, सही है। इसके अंदर हमारी जिस्म की यानी रीबिल्डिंग हो रही होती है, यानी जो तोड़ फोड़ हो चुकी होती है ना, या जो थकन हो चुकी होती है, वो इसके अंदर फिजिकली निकल रही होती है, सही है। इस वक्त में इंसान का जो जहन होता है ना, वो अपने सबसे कम एक्टिविटी की हालत में होता है, इंसान का दिमाग सबसे कम एक्टिविटी, यानी सबसे जो है ना वो उसकी एक्टिविटी कम हो चुकी होती है इंसान के दिमाग की, ठीक है। इस डीप स्लीप के पीरियड में, यानी जब ये इंसान की डीप स्लीप चल रही है, इसमें अगर किसी भी वजह से वो उठ जाए, जैसे कोई अलार्म बज गया, ठीक है, या जो है वो आपकी खिड़की के बाहर कोई मोटरसाइकिल वाले ने जो है वो साइलेंसर अपना निकाल करके फटफट फटफट करते हुए आप वो मोटरसाइकिल लेके गुजर गया, ठीक है, या किसी गाड़ी ने जो है वो इस तरह की म्यूजिक ऑन कर दी जोरदार किस्म की, तो किसी भी ऐसे फैक्टर की वजह से इंसान की अगर नींद टूट जाए जबकि वो डीप स्लीप में था, ठीक है, तो नींद तो टूट सकती है, मरा तो नहीं है ना, अभी वो जिंदा है ना, तो अगर उसकी नींद टूट जाए डीप स्लीप की हालत में, तो वो जो बेदार होता है ना, तो वो बहुत ही यानी एक अजीब यानी उस वो थकन की हालत में बेदार होता है, क्योंकि उसकी बॉडी की रिपेयर अभी चल रही थी, अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, ठीक है, और उसका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल लोएस्ट एक्टिविटी मोड में था, तो अभी जो बेदार होगा तो एक तो उसकी बदन की थकन अपनी जगह पे मौजूद रहेगी, और दूसरा उसका दिमाग भी अभी सोई हुई हालत में होगा, ठीक है, दिमाग भी सोई हुई हालत में होगा, क्योंकि वो डीप स्लीप में था ना अभी, और दिमाग उसकी उस हालत में पहुंच चुका था, ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस, ये सबको क्लियर है, ये जो तीन स्टेजेस है ना, इनको NREM, NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेजेस कहा जाता है, तो पहली स्टेज जो थी ट्रांजिशन मोड वाली वो N1, दूसरी स्टेज जो लाइट स्लीप वाली थी उसको N2, और तीसरी स्टेज जो डीप स्लीप वाली थी उसको N3 कह दिया साइंसदानों ने, N1, N2, N3, ये तीनों NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट की तीन स्टेजेस बन गई, ठीक है, जब ये तीसरी स्टेज मुकम्मल हो जाती है, यानी 20 मिनट तक उसकी डीप स्लीप हो गई, मुकम्मल हो गई, या किसी इंसान की जो है वो 40 मिनट की डीप स्लीप का पीरियड था वो मुकम्मल हो गया, तो अब वो नींद की आखिरी स्टेज में दाखिल होता है, या स्टेजेस ऑफ ऑफ स्लीप की आखिरी स्टेज में, जिसको हजरत ने यहां पर पांचवी स्टेज लिखा, लेकिन कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ने उसको चौथी स्टेज लिखा, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता चौथी कहें आप इसको या पांचवी स्टेज कहें, ठीक है, तो ये पांचवी स्टेज होती है ना, इसमें क्या होता है कि अब जो है ना वो एक्चुअली उसकी डीप स्लीप खत्म हो गई होती है, और अब उसकी एक ऐसी स्टेज शुरू हो गई होती है कि जिसमें वो सोया भी होता है लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी आंख हरकत कर रही है, हालांकि वो नींद की हालत में है अभी भी, ठीक है, गोया कि वो अब जागने की तरफ वापस हल्का हल्का सा जो है ना वो आ रहा होता है लेकिन फिर भी सो रहा है, तो इसमें जो है ना फिर इंसान ख्वाब भी देखता है, इसको ड्रीमिंग स्टेज भी कहते हैं, ख्वाब की स्टेज, ठीक है, इस स्टेज के अंदर साइंसदानों ने जो EEG के जरिए से दिमाग को मॉनिटर किया है ना, तो उसमें उन्होंने देखा कि दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा यानी एक्टिव हो जाता है इसके अंदर जब भी वो ख्वाब देख रहा होता है, क्योंकि दिमाग एक्टिव हो गया है, लेकिन जिस्म एक्टिव नहीं हुआ, जिस्म तो बिल्कुल अभी फालिज ज़दा हालत में, मफलूज है उसका पूरा का पूरा जिस्म, तो जिस्म हरकत नहीं कर सकता, दिमाग हरकत कर रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है ना वो दिमाग जो होता है वो गोया के उसकी रीबिल्डिंग हो रही होती है, रिज्यूमिनेशन हो रही होती है ऑफ द माइंड, जिस्म की तीसरी स्टेज में मुकम्मल हो गई, और इस चौथी या जिसको अगर आप पांचवी कहना चाहें तो पांचवी, इस स्टेज के अंदर दिमाग की रीबिल्डिंग हो रही होती है, और दिमाग की रीबिल्डिंग का मतलब क्या कि दिमाग का जो फंक्शन है ना उसकी रीबिल्डिंग हो रही होती है, जो कि मेमोरी है, ठीक है, याददाश्त, याद रखना, ठीक है, तो उसकी याददाश्त जो होती है ना वो गोया के रीबिल्ड हो रही होती है और रिफ्रेश हो रही होती है वगैरह, तो ये पांच स्टेजेस हो गए, ठीक है, ये पांच स्टेजेस मिला करके इंसान का एक स्लीप साइकिल बनता है, स्लीप साइकिल क्या कहते हैं इसको, स्लीप साइकिल, वो चलाने वाली जो बाईसाइकिल होती है ना, वही वाला लफ्ज है ये, CYCLE। NREM की 3 स्टेजेस, और फिर ये आखिरी स्टेज जिसको REM कहते हैं, ये सब मिलकर के एक साइकिल बनता है। ठीक है। अच्छा, ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था। और इसके बाद हजरत ने जो अगली बात करी, तो ये है वो स्लीप के साइकिल के बारे में, नींद का साइकिल। ठीक है। तो उसमें हजरत ने लिखा या बयान में फरमाया कि हर इंसान के सोने का साइकिल मुख्तलिफ होता है। ये साइकिल बाज लोगों का 90 मिनट्स का होता है और बाज लोगों का 120, 120 मिनट्स का होता है। ठीक है। 90 मिनट्स के होने का मतलब क्या हुआ कि जिनका ट्रांजिशन पीरियड भी जल्दी पूरा हो गया, फिर लाइट स्लीप का पीरियड भी जल्दी पूरा हो गया, फिर डीप स्लीप का पीरियड भी जल्दी पूरा हो गया, और फिर REM का पीरियड भी जल्दी पूरा हो गया। तो समझने के लेट्स से के 60 मिनट में NREM के तीनों स्टेजेस मुकम्मल हो गए, 60 मिनट में। ठीक है। फिर आखिर में जो 30 मिनट रह गए ना, उसमें उसमें REM का पांचवा स्टेज जो है REM, वो पूरा हो गया। तो 60 प्लस 30 कितने बनते हैं? 90 बनते हैं। ठीक है ना। तो इस बंदे का जो स्लीप साइकिल हुआ वो 90 मिनट का कहलाएगा। ठीक है। और किसी शख्स का जो है वो अगर 120 मिनट का स्लीप साइकिल है, तो वो किस किस तरह से होगा कि उसके जो NREM के जो पहले 3 स्टेजेस हैं वो अगर 80 मिनट में पूरे हो, 80 मिनट्स में। ठीक है। तो आखिरी स्टेज यानी REM का जो स्टेज है वो फिर 30 मिनट में, REM का स्टेज पूरा हो गया। तो 80 प्लस 30 कितने बनते हैं? एक्चुअली 30 नहीं 40 मिनट में, REM का स्टेज जो है वो 40 मिनट में पूरा हुआ। तो 80 प्लस 40 कितने बनते हैं? 120। तो इसका स्लीप साइकिल 120 मिनट्स का कहलाएगा। ठीक है। तो किसी का 90 मिनट का स्लीप साइकिल होता है, किसी का 80 मिनट का स्लीप साइकिल, किसी का 90 मिनट का, सॉरी सब क्या उल्टा जा रहा हूं, किसी का 90 मिनट का स्लीप साइकिल हुआ, उसमें उसके ये सारे स्टेजेस मुकम्मल हो गए, किसी का 100 मिनट का स्लीप साइकिल हुआ, उसमें उसके ये सारे स्टेजेस मुकम्मल हो गए, किसी का 110 मिनट का स्लीप साइकिल हुआ, किसी का 120 मिनट का स्लीप साइकिल हुआ। ठीक है।
बेटा
तो एवरेज जो है ना वो 90 से लेकर के 120 मिनट के स्लीप साइकिल्स लोगों के होते हैं। ठीक है। किसी का 90, किसी का 100, किसी का 110, किसी का 120। ठीक है। तो इस तरह से फरमाया कि हर इंसान के सोने का साइकिल मुख्तलिफ होता है। ये साइकिल बाज लोगों का 90 मिनट का होता है और बाज लोगों का 120 मिनट का होता है। ठीक है। चुनाचे हर बंदे को देखना चाहिए कि इसका जो नींद का साइकिल है वो क्या है। ठीक है। अब ये जरा सी मुश्किल बात है ये जो हजरत ने यहाँ पे लिखा है ना, कि हर बंदे को देखना चाहिए कि उसका जो नींद का साइकिल है वो क्या है। ठीक है। तो घड़ी को सामने रखें और फिर देखें कि जब मैं सोता हूं तो मुझे 2 घंटे लगते हैं या 1.5 घंटा लगता है। ठीक है। अब सोते में आप अपनी घड़ी को कैसे देखेंगे? भाई आप तो सो गए तो घड़ी को आप कैसे देखेंगे? ठीक है। तो इसका तरीका अब थोड़ा सा और तहकीक करनी पड़ेगी, तब जाकर के सही समझ में आएगा और तब हम आपको शायद सही समझा सकें, लेकिन फिलहाल इतना ही समझ में आया है। भाई मैं भी तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं ना, वही तो नहीं नाजिल होती हमारे ऊपर भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वरना तो फिर पता नहीं क्या होता, अल्लाह रहम करे। तो हमने जो समझा है इसको पढ़ करके और तहकीक करके, ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर आप जैसे किसी टाइम पे सो रहे हैं तो आप जो है ना वो बस जिस वक्त आप लेटे हैं ना उस वक्त आप टाइम बस नोट कर लें। ठीक है। फिर उसके बाद आप घड़ी ना देखें, फिर आप सो जाएं। ठीक है। फिर जब आप उठते हैं बगैर किसी अलार्म के, या बगैर किसी के उठाए हुए आप जब उठते हैं, तो अगर आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, ठीक है, अगर आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं ना, तो उस वक्त आप देखें कि टाइम क्या है घड़ी के ऊपर, ठीक है। तो अगर वो टाइम जो है वो 90 मिनट्स है, आप 90 मिनट्स के बाद उठ गए और आप अपने आप को फ्रेश फील कर रहे हैं, ठीक है, थके थके फील नहीं कर रहे हैं और ये कि गुनूदगी आपके ऊपर नहीं आएगी बल्कि आप फ्रेश हो गए, तो ये समझ लें कि ये आपका स्लीप साइकिल जो है वो 90 मिनट्स का। और अगर आप जो है जब उठे तो उस वक्त आपने देखा कि घड़ी के ऊपर 100 मिनट गुजर चुके हैं, यानी जो आपने टाइम नोट किया था ना लेटते वक्त, तो उससे 100 मिनट गुजर चुके हैं और अभी जो आप उठे हैं या आप फ्रेश उठे हैं, तो आपका फिर स्लीप साइकिल जो है वो 100 मिनट का हुआ, ठीक है। या 110 मिनट के बाद अगर आप उठे और फ्रेश फील कर रहे हैं तो 110 मिनट का हुआ, और अगर 120 मिनट के बाद आप उठे और आप फ्रेश फील कर रहे हैं तो वो 120 मिनट का हुआ, ठीक है। तो ये आपका स्लीप साइकिल हो गया कि आपका स्लीप साइकिल जो है ना वो आपको पता चल गया कि वो 90 मिनट का है कि 100 मिनट का है कि 110 मिनट का है कि 120 मिनट का है, ठीक है। तो फिर आगे फरमाते हैं कि जब पता चल जाए कि मेरा मेरा साइकिल इतना है, तो अब इंसान को एक साइकिल या दो साइकिल या तीन साइकिल नींद मुकम्मल करनी चाहिए, ठीक है। एक साइकिल मुकम्मल यानी अगर 90 मिनट है तो 90 मिनट नींद मुकम्मल करनी चाहिए, या दो साइकिल मुकम्मल करनी चाहिए। दो साइकिल कितना होगा, 180 मिनट, ठीक है। और तीन साइकिल कितना होगा, 360 मिनट, ठीक है। 360 मिनट कितने बनते हैं, 6 घंटे, 6 घंटे बनते हैं। 360 को अगर आप 60 से डिवाइड करें तो 6 आवर्स बनते हैं, तो यानी 6 घंटे जो है ना वो उसको नींद मुकम्मल करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक फरमाया कि मसलन अगर किसी का 1.5 घंटे का साइकिल है, 1.5 घंटे कितने बनते हैं, 90 मिनट ना, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो 1.5 घंटे का साइकिल है, तो वो बंदा अगर 1.5 घंटा दोपहर को कैलूला कर लेगा तो बिल्कुल फ्रेश उठेगा। कैलूला क्या है, दोपहर का जब इंसान खाना खाता है तो उसके बाद लेट जाना, ये सुन्नत है, ठीक है, कैलूला कर लेना। तो उसको फरमाया कि अगर वो 1.5 घंटा दोपहर को कैलूला कर लेगा तो बिल्कुल फ्रेश उठेगा, क्योंकि उसका जो नींद का साइकिल है ना वो 90 मिनट में पूरा हो जाता है, यानी वो ट्रांजिशन फेस में जाता है, फिर लाइट स्लीप में जाता है, फिर डीप स्लीप में जाता है, फिर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जाता है, और फिर वो मुकम्मल हो जाता है उसका साइकिल, तो अब वो फ्रेश उठेगा। और रात के वक्त जो है वो ज्यादा लंबा टाइम होता है सोने के लिए, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो निजाम बनाया है ना ज्यादा लंबा टाइम का, ठीक है। तो रात को अगर वो दो साइकिल सो लेगा, दो साइकिल्स का मतलब क्या हुआ, 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 180, ठीक है, तो 180 मिनट्स अगर वो सो लेगा तो वो बिल्कुल फ्रेश उठेगा। और अगर वो चार साइकिल सोएगा तो 9 घंटे सोने के बाद फ्रेश उठेगा। अब ये चार साइकिल वाला जो मामला है ना, ये दरअसल मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो 9 घंटे लिखा है, या तो ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, या जो है ना ये हो सकता है कुछ कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई हो, क्योंकि 4 घंटे जो है वो 8 आवर्स बनता है, सॉरी नहीं, 6 आवर्स बनता है ना, ठीक है, 1 मिनट, क्लास के दौरान करेंगे तो यही होगा। जी 4 घंटे जो है वो 6 आवर्स बनता है, तो 9 घंटे तो यहाँ पे सही नहीं लग रहा, 6 घंटे सोने के बाद वो फ्रेश उठेगा। लेकिन अगर साइकिल के दरमियान में उठ गया, साइकिल के दरमियान में उठ गया, तो 13 घंटे सोने के बाद भी वो सुस्त उठेगा। क्या मतलब? कि इसने अगर अपना साइकिल मुकम्मल नहीं किया ना, और साइकिल के दरमियान में उठ गया, तो फिर ये फ्रेश नहीं उठेगा। ठीक है, क्या मतलब? कि पहला साइकिल पूरा ने पूरा तो कर लिया इसने, लेकिन जो दूसरा साइकिल है वो पूरा नहीं हुआ, बल्कि दूसरे साइकिल में जब वो डीप स्लीप की स्टेज में था उसमें वो उठ गया, तो उसका दूसरा साइकिल मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल तो तब होगा ना जब REM स्टेज भी मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन अभी REM स्टेज में पहुंचा ही नहीं था। अभी जो दूसरा साइकिल इसका चल रहा था उसके ये डीप स्लीप वाले स्टेज में उठ गया, तो वो डीप स्लीप वाली जो स्टेज थी उस वक्त तो उसका दिमाग जो था ना वो बिल्कुल कम एक्टिविटी मोड में था, और ये उठ गया तो ये फ्रेश नहीं उठेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसका दूसरा साइकिल मुकम्मल हो गया, फिर ये तीसरे साइकिल इसका शुरू हो गया। ठीक है, तो तीसरे साइकिल में भी वही 4 स्टेजेस या 5 स्टेजेस मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, NREM की फर्स्ट 3 स्टेजेस मुकम्मल होनी चाहिए, फिर REM की आखिरी जो स्टेज होती है वो मुकम्मल होनी चाहिए, तब 3 साइकिल मुकम्मल हो जाएंगे, फिर ये उठेगा तो फिर ये फ्रेश उठेगा। क्योंकि REM स्टेज के बाद उठना जो है ना ये फ्रेश उठने का सबब बनता है, कि जब REM स्टेज मुकम्मल हो जाए तब इंसान उठेगा, तब उसका फ्रेश उठना होगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले डीप स्टेज डीप स्लीप वाली स्टेज में उठ जाएगा तो वो फ्रेश नहीं उठेगा। ठीक है, अच्छा इन्होंने कोई सवाल लिखा है कि यूजली पीपल डोंट गेट अप इन वन साइकिल एट नाइट, टिपिकली दे स्लीप फॉर अप टू 5 to 6 आवर्स एट नाइट, इन दिस केस हाउ शुड दे कैलकुलेट देयर साइकिल, हाउ शुड दे कैलकुलेट देयर साइकिल। देखिए साइकिल का जो एक साइकिल का जो टाइम है ना वो तो 120 से ज्यादा नहीं है, 120 मिनट से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ना रात के वक्त कैलकुलेट करना मुश्किल है, ये काम आप दिन के वक्त कर सकती हैं, जो कैलूला का वक्त लिखा है ना, ठीक है, उसमें आप ये काम कर सकती हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो आप एक साइकिल यानी 1.5 घंटे के बाद आप उठ सकते हैं। ठीक है, एक साइकिल में रात के वक्त तो आप उमूमी तौर पर यही आप कह रहे हैं ना कि जैसे 5 आवर्स सोते हैं या 6 आवर्स सोते हैं, ठीक है, उसके बाद उठते हैं ना, तो उस वक्त तो फिर आपके मल्टीपल साइकिल्स हो चुके होते हैं ना। ठीक है, उस वक्त बड़ा मुश्किल काम है ये काम करना, क्योंकि आप फ्रेश उठना ये आमतौर पर ये मुश्किल है। ठीक है, उसके दूसरे भी रीजंस हैं, और वो वही वाले रीजन दूसरे रीजन है वो वही है कि फिर वो बड़ी बातें आ जाती हैं कि दुनिया का निजाम ही खराब हो चुका है, और आप सोते ही जो है वो देर से हैं, और आपको फिर फजर के वक्त में उठना होता है, तो ये फिर दूसरे फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो दोपहर को एक साइकिल जो है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर को आप मल्टीपल साइकिल्स नहीं सोएंगे। ठीक है, बल्कि एक ही साइकिल 1.5 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा ना आपको कोई ना कोई आके, यानी अगर आप उससे ज्यादा सोने सोने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई आपको आके उठा देगा। ठीक है, तो ये लिखा कि लेकिन अगर साइकिल के दरमियान में उठ गया ना, तो बेशक वो टोटल 13 घंटा भी सो जाए ना, यानी उठ गया फिर उसके बाद जो है वो सो रहा है, तो वो सुस्ती उठेगा, फिर उसको नींद आएगी और जी चाहेगा कि मैं फिर सो जाऊं, और काम करने को दिल नहीं चाहेगा। तो जो औरतें महसूस करती हैं कि इतना सोने के बाद भी हम फ्रेश नहीं होती, वो असल में अपने साइकिल के दरमियान में उठ जाती, यानी नींद के साइकिल पूरा होने से पहले ही उठ जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि साइकिल को मुकम्मल करने के बाद उठना चाहिए। अपनी नींद की मैनेजमेंट ऐसी करें कि एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, जितना भी सोना है उसके बाद उठें ताकि आप फ्रेश उठें, ठीक है। यानी एक साइकिल मुकम्मल करके उठें, या दूसरी साइकिल मुकम्मल करके उठें, या तीसरी साइकिल मुकम्मल करके उठें, ठीक है ना। तो अब ये जाहिर है आप सोच रही होंगी कि भाई ये हमारे कंट्रोल में कुछ थोड़ी है, ठीक है, तो ये तो दूसरी चीजों के कंट्रोल में होता है, दूसरे फैक्टर्स होते हैं। बेशक ऐसा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना वो हमारी नींद के ऊपर असर अंदाज हो रहे हो, ठीक है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ठीक है। तो अपने दिल के खुश रखने को तसव्वुर करें कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है ना, तो वहां पर जो है ना फिर आप अपनी साइकिल को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद फिर जो है वो अपने साइकिल के हिसाब से उठें, ठीक है ना। लेकिन जहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो वहां पर तो आपकी नींद जो है ना फिर बैरूनी चीजें कंट्रोल कर रही होती हैं, आप खुद कंट्रोल नहीं कर रही होती, ठीक है ना। तो बात फिर वही आ जाती है कि भाई जो अपने बस में है वो तो करे ना, जो अपने बस में नहीं है उसको आप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम बताते हैं आपको बड़ी मजे की बात, ठीक है। अभी हम जो है वो अपने साथियों के साथ जो है वो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, अभी से मुराद 2-3 दिन पहले की बात। तो एक हमारे साथी हैं, उनके साथ जो है ना वो एक अरब भाई, कोई इजिप्शियन भाई है गालबन, उनके पड़ोसी हैं, वो उनसे जो है वो खड़े बातें कर रहे थे। तो जब उनकी बातें मुकम्मल हो गई तो फिर बाद में हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमें बताया कि ये मुझसे ये बातें कर रहे थे कि मैं अपने घर की जो खिड़कियां हैं ना उन खिड़कियों के ऊपर मैं किस तरीके से उनको साउंड प्रूफ बनाऊं, किस तरीके से अपने घर की खिड़कियों को साउंड प्रूफ बनाऊं, इसलिए कि मैं रात को सो ही नहीं पाता, ठीक है। उसकी वजह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वैलुल लिल अरब है, अल्लाह ताला इन अरबों के ऊपर रहम करे इनकी बर्बादी, ठीक है, कि ये जो है वो हमारे घर के बाहर जो है ना ये सारी रात जो है वो मोटरसाइकिलों के ऊपर शोर करते रहते हैं, गाड़ियों के ऊपर शोर करते रहते हैं, हत्ता के गली में भी आकर के जो है वो शोर करते रहते हैं, ठीक है ना, ये अरब नौजवान, ठीक है। और इतना ज्यादा शोर करते हैं कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल भी नहीं सो पाते और कुछ लोग जो है वो मुश्किल से सो पाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है ना फिर वो अपने एसी के की आवाज जब होती है ना तो उस एसी की आवाज से फायदा उठाते फिर वो सो जाते हैं, क्यों, इसलिए कि एसी की आवाज इतनी तेज होती है कि बाहर की आवाजें दब जाती हैं, तो एसी की आवाज के तो वो आदी हो जाते हैं, वो मुस्तकिल एसी की आवाज चल रही होती है ना, तो बाहर की आवाजें जो है वो उसके अंदर डूब जाती हैं, तो एसी की आवाज की वजह से वो सो जाते हैं। वरना अगर एसी ना चल रहा होता है, जिस वक्त सर्दी का मौसम होता है एसी नहीं चल रहा होता, तो बाहर की आवाजें इतनी ज्यादा आती हैं कि कमरे के अंदर आप सो नहीं सकते, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अब आप इनसे जाके लड़ नहीं सकते, आप इनके ऊपर की कर सकते, ठीक है ना, आप इनको डांट करके भगा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब ये तो अब आपके बस में नहीं है ना कि अब क्या करें इसका, ठीक है ना। तो अब वो जो भाई हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से अपनी खिड़कियों को हम साउंड प्रूफ बना देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो भी इक्विपमेंट मिलता है, जो भी चीजें मिलती हैं, तो वो उसको तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो लगा दें अपनी खिड़कियों के ऊपर, तो बाहर की आवाजें तो नहीं आएंगी। ये बाहर के फैक्टर्स हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उसके ऊपर आपसे पीछे भी बात हो चुकी है कि इंसान का, इंसानियत का जागना जो है ये नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमें बताया, इसका खास ताल्लुक जो है वो फितने दज्जाल के साथ है। यानी जब दुनिया के अंदर फितने दज्जाल अपनी इंतहा को पहुंच चुका होगा ना, तो उस वक्त दुनिया की हालत ये होगी कि दिन और रात में फर्क खत्म हो चुका होगा, ठीक है, दिन और रात का फर्क जो है वो खत्म हो चुका होगा। तो दिन होगा ही सूरज की रोशनी की वजह से, और रात भी दिन ही होगी क्योंकि रात में भी रोशनी ही रोशनी होगी, ठीक है। आजकल ऐसे ही मामला है कि रात में भी रोशनी रोशनी है, ठीक है। तो इस वजह से अब ये जो बाहर के फैक्टर्स हैं कि भाई हर तरफ रोशनी ही है और पूरा दुनिया के निजाम ऐसे बन चुका है, तो अब ये आपकी स्लीप के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं और आप अपने घर की रोशनी को स्विच ऑफ कर सकने पे कुदरत रखती हैं, तो तो कर दें उसको ऑफ, ठीक है, और जल्दी सोने का जो है वो ना सिस्टम बना लें अगर आप कर सकती हैं। और अगर नहीं कर सकती हैं तो बस यही समझें कि जैसे आप ससुराल में रह रही हैं और ससुराल वाले जो हैं वो आपको अपने इशारों पे चला रहे हैं और आपकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, तो उस वक्त अब आप क्या करेंगी? बस अल्लाह ताला से मदद मांगेंगी, दुआ करेंगी, अल्लाह ताला से रहम की अपील करेंगी, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो अपने माहौल को नहीं बदल सकती। यही मामला जो है वो रोशनी का भी यही मामला है कि आप अपने माहौल को नहीं बदल सकती, तो अल्लाह ताला से बस मदद मांग क्यों रही, ठीक है। तो हम ऐसे हालात में रहने कि जिनके अंदर ये वाले मामला दुनिया के अंदर राइज हो चुके हैं ना, ठीक है। तो अब हजरत ने यहाँ पे लिखा कि अपनी नींद की मैनेजमेंट ऐसी करें, यानी जितना आप कर सकते हैं उतना तो करें ना, कि एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, जितना भी सोना है तो उसके बाद उठें ताकि आप फ्रेश उठें। फिर आगे लिखा कि या बयान में फरमाया कि ये जो अल्लाह वालों के बारे में कहते हैं कि थोड़ा सो करके भी फ्रेश उठते हैं, तो असल में अल्लाह उनको तौफीक दे देते हैं कि वो एक साइकिल के बाद उठते हैं तो वो इसी तरह फ्रेश होते हैं जिस तरह लोग 8-9 घंटे की नींद पाने के बाद फ्रेश होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है वो 8-9 घंटे की नींद पाने के बाद फिर फ्रेश होते हैं, और ये जो है ना वो एक साइकिल बस इनकी नींद हो जाती है, यानी 90 मिनट की या 120 मिनट की, ठीक है, और उसके बाद फिर वो जब उठते हैं तो वो फ्रेश उठते हैं, ठीक है। तो ये अब एक जैबी निजाम भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, और ये इसको आप एक्सेप्शन भी कह सकते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है, ये इस्तेस्नाई सूरत है, ये रूल नहीं है, ठीक है, ये रूल नहीं है, ये इस्तेस्नाई सूरत है, ठीक है। तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला का निजाम क्या है कि रूल जो है ना उसको फॉलो करना होता है, आप एक्सेप्शंस को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, आपको रूल को फॉलो करना, एक्सेप्शन को फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। कल ही जो है वो एक नौजवान से बात हो रही थी, तो नौजवान से यही स्लीप के बारे में भी थोड़ी सी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत कम सोया करते थे, तो क्या हम नबी अलैहिस्सलाम की को फॉलो कर सकते हैं इसके अंदर, हमें फॉलो करना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम? तो मैंने कहा नहीं, हमें नहीं फॉलो करना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम इस वाले मामले के अंदर, ठीक है। उसके दो वजूहात हैं, एक वजह तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की तो 11 बीवियां भी थी, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की 11 बीवियां थी, तो क्या हमें नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हुए 11 शादियां करनी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के अपने हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 मर्दों की कुव्वत अता फरमाई थी, 40 मर्द, और ये 40 मर्द भी आज के जमाने के मर्द नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के एक मर्द में जितनी ताकत होती थी ना, नबी अलैहिस्सलाम में उसके मुकाबले में 40 मर्दों के बराबर बराबर ताकत थी, ठीक है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी ताकत है? हमारे अंदर तो एक मर्द के बराबर ताकत नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के अंदर तो 40 मर्दों के बराबर ताकत होती थी, ठीक है। तो एक तो ये अकली दलील हो गई कि भाई आप अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इस तरह से कयास नहीं कर सकते, ठीक है, कि जो आपसे सुनने क्या वैसे ही मैं करूंगा, ठीक है। लेकिन जिन चीजों में नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करना भी है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तो हमारे लिए उसवा हसना है ना, तो उसमें नबी अलैहिस्सलाम को हमने फॉलो करना भी है, लेकिन हर चीज में तो फॉलो नहीं करना ना, लेकिन किन चीजों में फॉलो करना है, तो उसके लिए फिर जो है ना वो शरीयत का उसूल ये है कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें करने को कहा है ना, हमें वो करना है, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ अमल को फॉलो नहीं करना, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को फॉलो करना, हुक्म असल चीज, हुक्म है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है वो क्या है? जल्दी सो, ठीक है, इशा के बाद जो है वो सो जाओ। तो हमने इस हुक्म के ऊपर, इसी को कौली हदीस भी कहा जाता है, यानी हदीस में तो फिर नबी अलैहिस्सलाम के फेल भी नकल है, क्या अफाल किया ने, और नबी अलैहिस्सलाम के अकवाल भी हदीस के अंदर मौजूद है ना। तो जो अकवाल होते हैं ना उनको कौली हदीस कहा जाता है, और जो अफाल होते हैं उनको फेली हदीस कहा जाता है। जब कौली हदीस फेली हदीस के खिलाफ हो, यानी नबी अलैहिस्सलाम का फेल कुछ और है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का कौल कुछ और है, ठीक है, तो हम किसको फॉलो करेंगे? हम नबी अलैहिस्सलाम के फेल को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि कौल को फॉलो करेंगे। सबसे सादा मिसाल इसकी शादियों वाली है, ठीक है। शादियों में नबी अलैहिस्सलाम का फेल किया है, 11 बीवियां, और एट ए टाइम 11 नहीं भी थी तो 9 तो थी ना, 9 तो एक वक्त में थी नबी अलैहिस्सलाम की बीवियां, तो ये फेली हदीस क्या है, 9 बीवियां, एक वक्त में 9 बीवियों का होना। और कौली हदीस क्या है, 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। कौली हदीस क्या है, 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। अब हम कौन सी वाली हदीस को फॉलो करेंगे, उम्मती कौन सी वाली हदीस को फॉलो करेगा? क्या फेली हदीस को फॉलो करेगा कि भाई देखो नबी अलैहिस्सलाम ने तो 9 9 बीवियां करी ना एक वक्त में, मैं भी 9 करूंगा एक वक्त में, या फेली हदीस को फॉलो करेगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने चाहे कुरान के आयात के जरिए से फरमाया हो या अपने हुक्म के जरिए से फरमाया हो, ठीक है, 4 4 की इजाजत थी बस, 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है किसी मुसलमान को एक वक्त में, तो कौन सी वाली हदीस को फॉलो करोगे? कौली हदीस को फॉलो करें, ठीक है ना भाई। औरतें तो 4 की भी इजाजत नहीं देंगे, बस एक ही के ऊपर इक्तफा करो, ठीक है, तो 4 के ऊपर तो सब मुत्तफिक है ना कि भाई 4 की तो इजाजत दी है, वो भी कंडीशंस के साथ इजाजत दी है, लेकिन 4 तक की मैक्सिमम, ठीक है। बिल्कुल यही मामला नींद का भी मामला, कि नबी अलैहिस्सलाम की फेली हदीस क्या बताती है, यानी हदीसें जो नबी अलैहिस्सलाम के फेल के बारे में है वो क्या है, कि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो कानू कलीलम मिनल लैल, ठीक है, कि रात के वक्त बहुत कम सोया करते थे और बहुत लंबी जो है वो इबादत किया करते थे, ठीक है, लंबी लंबी सूरतें। और कौली हदीस क्या है, जल्दी सो जाओ, तो फिर कौन सी वाली हदीस को फॉलो करेंगे? कौली हदीस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, सहाबे कराम भी तो उम्मती थे ना, सहाबे कराम नबी तो नहीं थे ना, तो हमें जो है वो सहाबे कराम के अमल को देखना है, क्योंकि हम भी उम्मती हैं, नबी नहीं है, और सहाबा भी उम्मती थे नबी नहीं थे, ठीक है। तो सहाबा के जो मामूलात हैं उनको हमें देखना, ठीक है। अब सहाबा के मामूलात क्या है, कि सहाबा जो है वो रात को जल्दी सो जाया करते, ठीक है, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, रूल की बात कर रहे, रूल ये होता था कि सहाबा जल्दी सो जाया करते थे, ठीक है। अच्छा, सहाबा का दिन कैसा होता था, एक बड़ी अजीब हदीस आप लोगों के साथ हमने कुछ अर्सा पहले शेयर भी करी थी, वो पढ़ करके आज की क्लास जो है वो हम खत्म करते हैं कि हाँ, कि जब मुसलमान हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना मनवरा पहुंचे थे ना, तो अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान मवाखात कायम कर दी थी, ठीक है। तो हजरत सलमान फारसी रजला तारान और अबू दरदार रजला तारान के दरमियान नबी अलैहिस्सलाम ने मवाखात कायम कर दी कि भाई ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, क्योंकि भाई भाई का मतलब ये यहाँ पर ये था कि भाई एक दूसरे को असिस्ट करेंगे दीनी और दुनियावी मामलात में, एक दूसरे की मदद किया करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपसे हमने भाईचारा कायम कर दिया था। तो एक मरतबा हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन अबू दरदार रजी अल्लाह तआला अन से मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि उम्मे दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी अबू दरदा रजी अल्लाह तआला की बीवी, वो बड़े सादे से कपड़ों में, यानी बगैर बनाव सिंगार के, ये सलमान रजी अल्लाह तआला उन्होंने देखा। क्यों देखा, क्या वो पर्दे में नहीं थी? हाँ, वो पर्दे में नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए कि पर्दे का हुक्म नहीं आया था अभी तक, ठीक है ना। ये उलमा ने इसकी तहकीक करके बताया है कि इस हदीस में जो है ना, कि उन्होंने इनकी बीवी को देखा, वो इसी वजह से, क्योंकि ये 5 हिजरी से पहले का वाकया है, क्योंकि पर्दे के अहकाम आए ही नहीं थे, वो तो 5 हिजरी में आए। तो इन्होंने उम्मे दर्दारों को देखा कि वो बड़े बगैर बनाव सिंगार के, बस ऐसी जैसे कि आम से कपड़े में। तो उन्होंने उम्मे दरदार रजी अल्लाह से पूछा, क्योंकि पर्दे के अहकाम से पहले तो बातचीत भी हुआ करती थी आम, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हाल बनाया हुआ है। तो वो बोली कि आपके भाई अबू दरदा को दुनिया की कोई हाजत ही नहीं, ठीक है, यानी मैं उनके लिए क्यों बनाव सिंगार करूं, वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं, ठीक है। यानी कहना ये चाह रही थी कि वो तो रात भर नमाज पढ़ते रहते हैं और दिन भर रोजे रखते रहते हैं, ठीक है, तो मैं क्यों फिर बनाव सिंगार करूं भाई। अब ना फिर अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु आए और सरदार के लिए खाना तैयार किया, फिर कहा कि आप खाइए, ठीक है। अब खाना जो है वो किसने पकाया, या तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद ही पकाया, या बेगम साहिबा ने पकाया, ठीक है, जिस तरह से भी खाना पका। तो उन्होंने सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खाना रख दिया और उनसे कहा कि आप खाइए, मैं रोजे से हूं, आप खाइए, मैं रोजे से हूं। तो सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जब तक आप नहीं खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। खा लिया। सलमान रज़ी अल्लाह तआला जो है ये भी सहाबी रसूल थे, और अबू दरदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये भी सहाबी रसूल थे। एक सहाबी ने दूसरे सहाबी को कहा खाओ, अपना रोजा तोड़ दो, और दूसरे सहाबी ने बात मान ली। क्यों बात मान ली? एक रीजन तो ये कि ये रमजान के फर्ज रोजे नहीं थे, अगर फर्ज रोजे होते तो सलमान ताना भी रोजे से ही होते, ठीक है। फर्ज रोजा किसी के हुक्म पर नहीं तोड़ा जा सकता, मेहमान की खातिर नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। ये तो नफली रोजा था, तो वो मेहमान की वजह से तोड़ना जायज है, और मेहमान अगर कह रहा है तो और भी ज्यादा। अच्छा, मेहमान जो थे वो सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनकी उम्र सबको पता होगी कि वो 300 साल थी। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र तो ज्यादा से ज्यादा 60 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं कितनी, लेकिन 300 साल तो नहीं थी ना। तो वो सीनियर साहब ही थे, तो बड़ों का हुक्म मान लेना, अपना अपनी नफली काम को जो है वो बड़ों के हुक्म की वजह से छोड़ दें, ठीक है ना। ये बड़ों के आदाब में भी आता है, फर्ज को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तो फर्ज जो होते हैं वो तो अल्लाह के हुक्म की वजह से होते हैं ना, अल्लाह के हुक्म को तो आप नहीं तोड़ सकते किसी भी मखलूक के हुक्म की वजह से, ठीक है। तो इन्होंने रोजा तोड़ दिया। अच्छा, चुनाचे अबू दरदा ने भी खाना खाया। जब रात हुई, क्या मतलब अभी रात नहीं हुई थी, अभी ये खाना खा रहे थे, ठीक है। तो खाना जो है वो ये किस टाइम में खा रहे थे? जिस टाइम में अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रोजे से थे। रोजा किस टाइम तक रखा जाता है? रोजा मगरिब तक रखा जाता है, ठीक है। मगरिब के बाद कभी भी रोजा नहीं रखा जाता, कभी माजी में भी ऐसा नहीं हुआ कि रोजा जो है वो मगरिब के बाद तक चल रहा हो। रोजा तो मगरिब के अजान के वक्त तोड़ दिया जाता, खत्म कर दिया जाता है, सूरज के गुरूब जैसे ही होता है वैसे ही रोजा खत्म कर दिया जाता है। तो ये जो अबू दरदार रज़ियल्लाहु अन्हु रोजे से थे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वक्त था जिसमें कि ये लोग खाना खा रहे थे, ये मगरिब से पहले का वक्त था, राइट? ये मगरिब से पहले का वक्त था जिसमें ये लोग बैठ के खाना खा रहे थे, ठीक है। तो वो इन्होंने रोजा तोड़ दिया, सही। फिर उसके बाद क्या हुआ? रात हुई। रात किस वक्त होती है? जब सूरज गुरूब हो जाता है, तो उस वक्त रात की इब्तिदा तो हो गई होती है, लेकिन रात में अभी आप दाखिल नहीं हुए होते हैं, ठीक है। रात की जो है वो सेटिंग अभी शुरू हो गई होती है, मगरिब के वक्त सूरज गुरूब होता है, बहुत ज्यादा रोशनी रहती है, फिर वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, फिर जब रोशनी बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, उस वक्त फिर इशा की नमाज का वक्त होता है। क्या मतलब कि इशा की नमाज का वक्त कब दाखिल होता है? जब रात शुरू होती है, सही मानों में जब रात शुरू हो चुकी होती है, उर्दू में बोलेंगे जब रात शुरू हो चुकी होती है तब इशा की नमाज का वक्त होता है। तो इन्होंने ये लिखा कि जब रात हुई तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला नमाज के लिए उठने लगे, ठीक है। तो क्या मतलब कि ये लोग जो है वो मगरिब का वक्त गुजर चुका था, क्योंकि ये लोग खाना खा चुके थे, रोजा तोड़ चुके थे, ठीक है। अबू दरदा तआला, फिर मगरिब का वक्त हुआ, इन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर इशा का वक्त हुआ, इन्होंने इशा की नमाज पढ़ी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब रात हुई तो अबू दरदा दत्तान जो है ना वो नमाज के लिए उठने लगे। सलमान दत्तान ने कहा सो जाओ। क्या मतलब, अगर ये इशा की नमाज की बात हो रही है तो क्या सलमान दत्तान ने इशा की नमाज नहीं पढ़नी थी? ऑफ कोर्स उन्होंने इशा की नमाज पढ़नी थी। तो इससे क्या पता चला कि इशा की नमाज की बात नहीं हो रही, इशा की नमाज ये पढ़ चुके थे दोनों के दोनों, क्योंकि वो इशा की नमाज फर्ज नमाज है। अबू दरदा भी पढ़ चुके थे रज़ी अल्लाह तआला, और सलमान रज़ी अल्लाह तआला भी इशा की नमाज पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब किस नमाज की बात हो रही है? अब नफली नमाज की बात हो रही है कि इशा की नमाज के बाद रात पूरी दाखिल हो चुकी है, उस वक्त अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला जो है वो नमाज के लिए खड़े हुए, तो वो नफली नमाज के लिए खड़ा होना चाह रहे थे, और सलमान अल्लाह ने क्या कहा सो जाओ, ठीक है। तो वो सो गए, बात मान ली फिर, ठीक है। फिर कुछ रात गए उठने लगे, कुछ रात का वक्त गुजरा, फिर अबू दरदार उठने लगे, किस लिए उठने लगे? नमाज पढ़ने के लिए उठने लगे, ठीक है, क्योंकि जब नमाज के लिए इंसान उठता है तो अंदाजा हो जाता है कि अच्छा भाई अब ये वुजू वुजू करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और उस जमाने में सिंक वगैरह तो होते नहीं थे, बाथरूम तो होते नहीं थे, उस जमाने में क्या होता था कि पानी जो है वो किसी बर्तन के अंदर होता था, वहीं कोने में जाकर के वहीं पे वजू कर रहे होते थे, ठीक है। तो सलमान रतान को अंदाजा हो गया कि ये फिर नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं, ठीक है। ये जो ये उठे थे तो उस वक्त सलमान रतान भी उठ गए थे, क्यों? क्या ये सो नहीं रहे थे क्या? भाई वो तो सोने का हुक्म दिया था, तो अबू दरदा रतान सो गए, सलमान रतान भी सो गए। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनका या तो एक साइकिल स्लीप का पूरा हो गया या दो साइकिल स्लीप के पूरे हो गए और वो उठ गए। एक साइकिल पूरा हुआ, 90 मिनट गुजर गए, अब जो है वो उनका आरईएम मुकम्मल हो गया, उठ गए। सलमान रतान का भी आरईएम मुकम्मल हो गया, उठ गए, ठीक है। तो उस वक्त जब इन्होंने देखा कि फिर जो है वो नमाज के चक्कर में है, तो सलमान रतान ने उनसे कहा सो जाओ। अबू दरदान सो गए, ठीक है। फिर जब आखिरी रात हुई, रात का आखिरी पहर शुरू हुआ, ठीक है, यानी इनके जो है वो 3 साइकिल 4 साइकिल मुकम्मल हो गए, अब जो है वो रात का आखिरी पहर शुरू हुआ, तो सलमान रतान ने कहा अब उठो, यानी सलमान रतान उठ गए और उन्होंने अबू दरदार रतान से कहा कि अब तुम भी उठो। चुनाचे दोनों ने नमाज पढ़ी, ठीक है। ये कौन सी नमाज थी? ये तहज्जुद की नमाज थी। इनके 3 4 साइकिल्स मुकम्मल हो चुके थे, ठीक है। अब ये उठ गए, इन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। इसके बाद सलमान अतारा ने फरमाया कि तुम्हारे रब का भी तुम पर हक है, ठीक है, कि तुम उसके फराइज अदा करो और उसके लिए तुम एक्स्ट्रा भी नफले भी पढ़ो, जो कि तहज्जुद की नमाज क्या है, नफिल नमाज है, ठीक है। तो तुम्हारे रब का भी तुम पर हक है, लेकिन तुम्हारी जान का भी तुम पर हक है, ठीक है। तुम्हारी जान का तुम पर हक यह है कि तुम अपनी जान को जो है वो मुसीबत में ना डालो, ठीक है, उसको बीमार ना करो, अपने बदन को बीमार ना करो, अपने बॉडी को जो है वो रिपेयर होने दो, अपने दिमाग को जो है वो रिपेयर होने दो, ये तुम्हारी जान का तुम्हारे ऊपर हक है और तुम्हारी बीवी का भी तुम्हारे ऊपर हक है, ठीक है। ये तुमने अपनी बीवी के साथ जो किया हुआ है, तो ये तुम बीवी का हक अदा नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक। इसलिए हर हक वाले को उसका हक दो। सलमान रतानंद ये अल्लाह के नबी नहीं है, ये सहाबी रसूल है, ये एक दूसरे सहाबी रसूल को दीन सिखा रहे हैं। और दीन कैसे सिखा रहे हैं कि बिल्कुल दीन की जो बुनियाद है ना, जो असल है दीन की, कि ये दीन पूरा का पूरा हुकूक का नाम है। ये ऐसी असल सिखा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ नमाज पढ़ लिया करो या ये काम कर लिया करो, बल्कि असल पूरा यानी उसूलन पूरा का पूरा दीन उन्होंने 3 जुमलों के अंदर मुकम्मल कर दिया, ठीक है। ये हुकूक का नाम है, हर हक वाले को उसका हक, ठीक है। फिर अबू दरदा रतान नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। अब फजर की नमाज के लिए मस्जिद आए, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। फजर की नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर बैठते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान ने सच कहा, ठीक है, यानी सलमान रतान की जो बात थी उसको नबी अलैहिस्सलाम हमने ऑथेंटिकेट कर दिया कि ऐसा ही है जैसे कि सलमान ने, ठीक है। तो अब इस हदीस से हमें 2 बातें बड़ी अहम इस वाले लेक्चर से मुताल्लिक पता चलती हैं। एक तो ये कि सहाबा कराम जो तहज्जुद में उठा करते थे ना, ठीक है, तो वो अपने स्लीप साइकिल्स को मुकम्मल करके उठा करते थे, ठीक है, अपने जान को उसका हक दे करके फिर वो तहज्जुद में उठा करते थे। और दूसरी चीज क्या कि तहज्जुद में उठने के लिए जो उनकी नींद जल्दी शुरू होती थी, तो उसके लिए उनका खाना भी जल्दी होता था। खाना कब होता है, कब हो रहा था, मगरिब से पहले खाना हो रहा था, पहले खाना हो रहा था, ठीक है। तो ये है वो तरतीब जो अल्लाह ताला की बनाई हुई तरतीब है, जो कि सहाबा कराम के अय्याम इस तरतीब पे हुआ करते थे, ठीक है। सहाबा कराम के दिन जो है ना वो इस तरतीब पे हुआ करते थे। इस हदीस से बिल्कुल क्लियर वाजे है कि उनके दिन क्या हुआ करते थे। नबी अलैहिस्सलाम की जो वो वाली हदीस है ना जिसमें के दज्जाल के बारे में आप ने फरमाया ना, ठीक है, बड़ी लंबी सी हदीस है, दज्जाल के जमाने की बहुत सारी बातें आप ने फरमाई। तो उसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जब दज्जाल के बारे में कुछ बातें बताई, तो सहाबा ने आप से पूछा कि या रसूल अल्लाह मा लबथुहू फिल अर्थ, कि वो दज्जाल जमीन में कितने दिन रहेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, काला अरबाउन यौमन, 40 दिन वो जमीन में रहेगा, 40 दिन। लेकिन वो 40 दिन कैसे होंगे, आप ने आगे फरमाया, यौमुन कसनतिन, एक दिन एक साल के बराबर होगा। वह यौमुन कशहरिन, एक दिन एक महीने के बराबर होगा। वह यौमुन कजुमुआतिन, यहां पे लफ्ज जुमुआ जो है वो फ्राइडे का दिन मुराद नहीं है, बल्कि पूरा हफ्ता मुराद है, ठीक है, एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, ठीक है। यानी वो अरबाउना यौमन दुनिया में रहेगा, लेकिन उस अरबाउना 40 दिनों में से एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन जो है वो एक हफ्ते के एक एक, एक महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन जो है वो एक हफ्ते के बराबर होगा। आखिर में क्या फरमाया, वसाइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम, वसाइरु अय्यामिही, और फिर बाकी मानदा जो उसके होंगे ना, यानी जो बाकी मानदा दिन वो जमीन में रहेगा, दुनिया में रहेगा, वो किसके बराबर कैसे होंगे, वो का अय्यामिकुम, वो तुम्हारे अय्याम के जैसे होंगे। बाकी दिन जो वो दुनिया में रहेगा, अरबाउना यौमन में से 3 दिन तो हो गए ना, साल के बराबर, फिर हफ्ते के बराबर, फिर सॉरी साल के बराबर, फिर महीने के बराबर, फिर हफ्ते के बराबर, ये 3 दिन हो गए अरबाउना में से, ठीक है। फिर चौथा दिन जो आया, तो उसके बारे में क्या फरमाया कि चौथा दिन और चौथे के बाद 37 टोटल डेज, ठीक है, जो 40 में से 37 डेज हैं वो कैसे होंगे? वो तुम्हारे दिनों जैसे होंगे। तुम्हारे दिनों से कौन तुम्हारे, किसको फरमा रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम? ठीक है, जल्दी से आप में से कोई बता दे। नबी अलैहिस्सलाम में फरमा रहे हैं ना तुम्हारे दिन, तो तुम्हारे कौन, कौन तुम, किस किसकी बात हो रही है? मेरी और आपकी बात हो रही है कि मेरे और आपके दिनों जैसे होंगे, या सहाबा की बात हो रही है कि वो सहाबा के दिनों जैसे होंगे, है ना? क्योंकि जब कुम की जमीर आती है तो वो जो मुखाब होता है ना, जो सामने मौजूद होता है, उससे बात हो रही होती है। किस दिनों के जैसे होंगे? सहाबा के दिनों के जैसे। तो सहाबा के दिन कैसे होते थे? वो मगरिब पर खत्म हो जाते थे, ठीक है, मगरिब के ऊपर दिन खत्म हो जाता था, फिर एक ट्रांजिशन पीरियड आता था जो कि मगरिब से इशा तक का पीरियड होता था, जिसमें के दिन जो है वो रात में तब्दील हो रहा होता था, और फिर जब इशा का वक्त आता था तो उस वक्त रात शुरू हो चुकी होती थी, फिर सहाबा जो है वो इशा की नमाज पढ़ते थे, खाना तो वो खा चुके होते थे मगरिब से पहले, ठीक है, फिर जब इशा की नमाज पढ़ते थे तो उसके बाद फिर वो सो जाते थे, ठीक है। या ज्यादा से ज्यादा अगर थोड़ा डिले हो जाए किसी वजह से तो वो मगरिब के बाद खाना खा लेते थे, ठीक है, चिराग जलाया, मोमबत्ती जलाई, जो जमाने में चिराग और मोमबत्ती वगैरह घर के अंदर हुआ करते थे, तो उसकी रोशनी में जो है वो खाना खा लिया, जैसे कि वो एक मेहमान आए हुए थे तो अब जो है वो खाना उन लोगों के पास मौजूद, बहुत थोड़ा सा खाना था तो मेहमान को जो है वो चिराग की रोशनी में उन्होंने खाना खिलाया, लेकिन चिराग बुझा दिया ताकि उसको पता ना चले कि मेजबान साहब तो खा नहीं रहे। इससे क्या पता चलता है कि मगरिब के बाद खाना हो रहा था, ठीक है, लेकिन आमतौर पर मगरिब से पहले खाना हो गया, या मगरिब के बाद ज्यादा से ज्यादा खाना हो गया और इशा के बाद सोना हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो सहाबा के अय्याम थे वो तो ऐसे होते थे, हमारे और आपके अय्याम तो ऐसे नहीं है। हमारे और आपके अय्याम जो हैं वो तो मगरिब पे खत्म नहीं होते, वो तो इशा पे खत्म नहीं होते, तो इशा के कई घंटों के बाद भी खत्म नहीं होते, ठीक है, जब तक कि आप लाइट बंद करके खुद ही सो जाएं और आपके जो है वो पड़ोसी आपको ना जगा रहे हों या आपको कोई और एक्सटर्नल फैक्टर ना जगा रहा हो, तब आप जो है वो बड़ी मुश्किल से जा करके सोते हैं, ठीक है। तो दज्जाल के जो दुनिया में रहने के 37 डेज होंगे, ये दिन जो है वो फिर कैसे होंगे? सहाबा के दिनों जैसे होंगे। और सहाबा के दिनों की तारीफ अगर हम आपसे पूछें, तारीफ से मुराद डेफिनेशन, तो वो आप क्या बताएंगी? ये आप बता दें तो अपना क्लास खत्म कर देते, ठीक है। सहाबा के दिनों की डेफिनेशन आप दो अल्फाज में अगर करना चाहें तो कैसे करेंगी? इन्होंने कोई सवाल लिखा है कि सिंस दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ईयर टू मंथ टू वीक टू डेज, डज दिस मीन स्लोली द आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम एंड पीपल्स स्लीप टाइमिंग्स विल स्टार्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल? क्या वही तो आपसे पूछ रहे हैं, स्लोली द आर्टिफिशियल लाइट सिस्टम विल स्टार्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल, ये क्या बात हुई? हाँ, ये बात आपकी सही है कि पीपल्स स्लीप टाइमिंग्स विल स्टार्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल, अल्लाह आलम इफ इट विल स्टार्ट कमिंग बैक टू नॉर्मल और इट विल बी फोर्स्ड टू कम बैक टू नॉर्मल। स्लीप टाइमिंग्स विल बी फोर्स्ड टू कम बैक टू नॉर्मल, हाउ? ठीक है, फजर से दिन शुरू और मगरिब में खत्म। भाई ये तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूं? फजर से दिन शुरू और मगरिब में खत्म, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो मैं फिर आपसे सवाल इस चीज के बारे में थोड़ी कर रहा हूँ जो आपको पता है। इन्होंने लिखा जी 24 घंटे का दिन, अल्लाह, तहज्जुद से शुरू और मगरिब पर खत्म। नहीं भाई, वो तो हम आपको बता चुके हैं, सवाल तो हम आपसे कुछ और कर रहे हैं, ठीक है। सवाल आपसे हम ये कर रहे हैं कि सहाबा के दिन को फिर आप डिफाइन करना चाहें कि वो हमारे दिनों जैसे दिन नहीं थे, क्यों नहीं थे वो हमारे दिनों जैसे दिन? इसकी वजह सीधी सी है, साफ सी है, जो कि उन्होंने अपने सवाल में लिख भी दी है। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी, देर वॉज नो आर्टिफिशियल लाइटिंग। सहाबा के दिनों में कोई बल्ब नहीं होते थे, कोई ट्यूबलाइट नहीं होती थी, राइट? तो उनके दिन जो है वो मगरब पे खत्म हो जाते थे, मगरब से इशा तक जो है वो ट्रांजिशन पीरियड होता था, और इशा के बाद जो है वो सो जाते थे और तहज्जुद में वो उठ जाते थे। वो तो उनका अपना अमल है ना, काफिर लोग को थोड़ी तहज्जुद में उठा करते थे, वो तो मोमिन थे, इस वजह से तहज्जुद में उठते थे ना। लेकिन दिन का टाइम कैसा था, यही था, ठीक है? तो अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इन हदीसों को जोड़ करके तो ये समझ में आता है कि जो दज्जाल इस दुनिया में आएगा ना, तो उसका जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा, यानी आर्टिफिशियल लाइटिंग कंटिन्यूअसली 1 साल तक चलती रहेगी। लेकिन आर्टिफिशियल लाइटिंग, क्योंकि सूरज का निजाम तो हम पहली बात कर चुके हैं कि वो तो तब्दील नहीं होगा, इसी वजह से 5 नमाजें नहीं पढ़ेंगे वो 1 साल के अंदर, बल्कि 5 × 360 नमाजें पढ़ेंगे वो 1 साल के अंदर, ठीक है? तो आर्टिफिशियल लाइटिंग 1 साल तक चलती रहेगी, फिर उसके बाद दूसरा दिन शुरू होगा। भाई दूसरा दिन कैसे शुरू होगा? वही दिन जो है वो 1 महीना मजीद क्यों नहीं हो जाएगा, अलग क्यों होगा? महीने वाला दिन, 1 महीने वाला दिन 1 साल वाले दिन से अलग कैसे होगा? उनके दरमियान रात आएगी, ठीक है? रात आएगी का क्या मतलब? कि वो आर्टिफिशियल लाइटिंग शट डाउन हो जाएगी, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ लाइट जाती है ना, कहते हैं लाइट चली गई, बच्चे सारे बोलते हैं लाइट चली गई, तो लाइट चली जाएगी गोया, ठीक है? तो लाइट चली जाएगी तो रात शुरू हो जाएगी। जब रात, फिर वो लाइटिंग को ठीक करेंगे, लाइट दोबारा से आ जाएगी। अब जब लाइट दोबारा से आ जाएगी ना, तो वो 1 महीने तक चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, लाइट नहीं जाएगी 1 महीने तक। फिर 1 महीने के बाद फिर से पावर ब्रेक डाउन, पावर ब्रेक डाउन जिसको कहते हैं, लाइट चली गई। फिर उसके बाद अगला दिन शुरू होगा। अब जो आर्टिफिशियल लाइटिंग होगी वो 1 हफ्ते तक मुस्तकिल चलती रहेगी, फिर पाक दिन भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दिन आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आर्टिफिशियल लाइटिंग आ जाएगी? नहीं, नबी रसूल सलाम की जो अल्फाज हैं उससे पता चलता है कि अब आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं आएगी, बल्कि अब जो दिन होगा ना, यानी 1 हफ्ते का दिन मुकम्मल होने के बाद अब जो दिन आएगा वो आर्टिफिशियल लाइटिंग वाला दिन होगा ही नहीं, बल्कि वो, यानी वो हमारे जैसा दिन नहीं होगा, वो 21वीं सदी जैसा दिन नहीं होगा, बल्कि वो दिन कैसा होगा, का अय्यामिकुम, तुम्हारे दिनों जैसा होगा। और सहाबा का दिन कैसा होता था, वो तहज्जुद के वक्त में शुरू होकर के, बल्कि तहज्जुद के बाद भी एक और नींद भी होती थी, तो फजर के बाद कहना चाहिए, फजर से लेकर के मगरिब तक का दिन होगा, ठीक है? नो मोर आर्टिफिशियल लाइटिंग, पावर नो मोर गॉन, अल्लाह आलम। अब ये या तो वो दज्जाल के मरने तक जो है वो आर्टिफिशियल लाइटिंग दुनिया से खत्म हो चुकी होगी, जैसे होता है ना लाइट जाती है ना हमारे यहाँ, तो 24 घंटे लाइट जाती है, कभी 48 घंटे लाइट जाती है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में भी सुना है ऐसे ही होता है, फिर जब दज्जाल को ईसा अलैहि सलाम मार देंगे तो फिर उसके बाद लाइट आ जाएगी, अल्लाह आलम। लेकिन मुश्किल लगता है वैसे ये, ठीक है? तो बजाय तो ऐसे ही लगता है कि फिर उसके बाद जो है ना वो खत्म, नो मोर आर्टिफिशियल लाइटिंग, ठीक है? क्योंकि ईसा अलैहि सलाम का जो जमाना है, क्योंकि दज्जाल को कौन मारेगा, ईसा अलैहि सलाम मारेंगे, तो ईसा अलैहि सलाम का जो जमाना होगा ये तो परफेक्शन का जमाना होगा, दुनिया के अंदर जितनी बेहतरी हो सकती है ना हर लिहाज से, वो ईसा अलैहि सलाम के जमाने में होगी, ठीक है? तो भाई ये जो आपकी आर्टिफिशियल लाइटिंग का जमाना है, ये तो बीमारियों वाला जमाना है ना, इसमें तो इंसान की सेहत जो है वो सबसे ज्यादा खराब हालत में पहुंच चुकी है, जिसका ताल्लुक नींद के साथ है। भाई देखें, बेशक खाने के साथ भी इसका ताल्लुक है, हम गलत खाने खाते हैं, जो कि वो भी काफिरों के बनाए हुए खाने हैं, उन खानों को खाने से जो है वो हमारी सेहत खराब होती है, ठीक है ना? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से सेहत खराब होती है, खराब पानी पी रहे होते हैं, खराब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन खाने पीने से इन चीजों का जितना ताल्लुक है ना, उससे ज्यादा ताल्लुक बीमारियों का वो नींद के साथ, उससे ज्यादा ताल्लुक जो है वो नींद के साथ है। क्यों? इसलिए कि कि नींद एक अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाई थी कि जिसके अंदर जो बीमारियां होती हैं ना उनका इलाज भी हो जाता है, काफी हद तक, मुकम्मल इलाज नहीं होता लेकिन बड़ी हद तक छोटी मोटी बीमारियों का इलाज जो है, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे वो नफ्सियाती हो, छोटी मोटी बीमारियां को तो अल्लाह ताला ने सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म बनाया हुआ है नींद के अंदर, ठीक है। और जो नींद की सेल्फ हीलिंग से नहीं ठीक होती तो उनके लिए अल्लाह ताला ने तबीब बनाए हुए, उनके लिए अल्लाह ताला ने जो है वो दवाएं बनाई हुई है, ठीक है। ये जो नींद का निजाम खराब हो गया है ना, तो इसकी वजह से बीमारियां पूरी इंसानियत के अंदर फैली हुई। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आएगा तो उसमें जो अच्छे हालात होंगे, उसका मतलब खाली ये नहीं है कि खाना वाफिर मकदार में होगा, पीना वाफिर मकदार में होगा और अमनो अमान वाफिर मकदार में होगा, लेकिन इंसान बीमार के बीमार, राइट। तो बीमार इंसानों ने क्या एंजॉय करना है ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने को, फिर तो इंसानों की बीमारियां दूर होने का भी इंतजाम होगा और उसके लिए नींद का ठीक होना ये लाजिम है, उसके बगैर इंसानों की बीमारियों का निजाम दुरुस्त हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आज देख लें ना कितनी साइंस ने तरक्की करी है, लेकिन बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, अस्पतालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, फार्मेसीज की तादाद बढ़ती चली जा रही है, क्यों, इसलिए कि बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो साइंस की तरक्की से बीमारियां हल नहीं होने वाली हैं, ठीक है। वो तो फिर अल्लाह के निजाम को वापस लाने से बीमारियां खत्म होंगी ना, और वो निजाम जो है फिर ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वापस आएगा और अल्लाह ताला ही वापस लेकर के आएंगे, ठीक है। तो बहरहाल आजकल जो हमने ये हरकतें शुरू करी हुई है ना, डेढ़ होशियारी वाले, यानी होशियारी ऐसी जो कि लंगड़ी हो, तो हम बन गए दीनदार बहुत ज्यादा, ठीक है, हम बन गए बहुत ज्यादा दीनदार। तो हमने दीनदारी को जो है वो किस चीज के अंदर मुकैद किया हुआ है, किस चीज के अंदर मुकैद किया हुआ है, इबादतों के अंदर, ठीक है, इबादतें, हाँ जी, तहज्जुदें पढ़नी है, ये हमारी दीनदारी है। लेकिन हमने इस बात से आंखें बंद कर दी हैं कि दीनदारी जो है वो सिर्फ आपकी चंद इबादतों का नाम नहीं है, बल्कि दीनदारी जो है वो अल्लाह के बनाए हुए निजाम को सही समझना और उसके खिलाफ जो निजाम है उसको गलत समझने का नाम है। ये दीनदारी की सबसे पहली बुनियाद है, इसी को ईमान कहते हैं, कि अल्लाह के निजाम के ऊपर एतमाद करना, उसको सही समझना और उसके खिलाफ हर निजाम को गलत समझना, बुरा समझना। हम ये नहीं करते, हमने जो है ना वो दीनदारी अपने अंदर जो है ना वो घुसेड़ी है किसी तरीके से, और वो क्या है, चंद जाहिरी आमाल के जरिए से, चंद जाहिरी इबादतों के जरिए से। गलत को गलत समझना, चेंज करना तो दूर की बात, वो तो हमारे बस में नहीं है ना चेंज करना, लेकिन दिल में बुरा समझना, जो कि ईमान की आखिरी बुनियाद थी, आखिरी लेवल था ईमान का, कि गलत को तुम दिल में बुरा समझो, हम उसको ईमान में दाखिल ही नहीं करते। हम समझते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, बस कुछ मैं इबादतें कम कर रहा हूं वो मैं ज्यादा करना शुरू कर दूंगा, बस मुकम्मल दीनदारी हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत हमारा तसव्वुर, चंद इबादतें ज्यादा करना शुरू कर दूंगा, ये चंद अल्फाज ज्यादा पढ़ना शुरू कर दूंगा, चंद चीजें जो है वो ज्यादा मेरे मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्रीज हो जाएंगे, बस जी मेरी दीनदारी मुकम्मल हो गई। हालांकि दीनदारी तो ईमान से मुकम्मल होती है, और ईमान के तीन ही दर्जे हैं, गलत को तुम देखो तो उसको हाथ से तब चेंज करने की कोशिश करो, अगर हाथ से चेंज नहीं कर सकते तो उसको जो है वो जुबान से बदलने की कोशिश करो, रोकने की कोशिश करो, और अगर जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में उसको बुरा समझो, उसको अच्छा समझना, उसको नॉर्मल समझना, उसको ओके समझना, ये ईमान नहीं है, ठीक है। दज्जाल का जमाना इन्होंने लिखा मुकम्मल टेक्नोलॉजी वाला, और ईसा अलैहि सलाम का बगैर टेक्नोलॉजी वाला, जी बजायर तो ऐसे ही लगता है, बाकी अल्लाह ताला को ज्यादा पता है, बजायर तो ऐसे ही लगता है कि दज्जाल का जमाना जो है वो मुकम्मल टेक्नोलॉजी वाला जमाना होगा, 100% जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ सकती है उतनी टेक्नोलॉजी दज्जाल के जमाने में हो चुकी होगी, और ईसा अलैहि सलाम जो है ना जब वो आ जाएंगे दज्जाल को मार देंगे तो दज्जाल के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी खत्म हो जाएगी और दुनिया जो है वो फितरत के ऊपर वापस आ जाएगी, फितरत के ऊपर, ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ आवे की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।